दिन भर रविवार 20 दिसंबर मैं हूं निखिल रंजन। निर्भया बलात्कार कांड का नाबालिग दोषी रिहा, पीड़िता की मां ने कहा नाइंसाफी हुई उनके साथ।
पुलिस लगा दी गई है और मुझे आगे।
बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने किया डीडीसीए में भ्रष्टाचार का दावा, करोड़ों रुपए के ठेके फर्जी कंपनियों को देने का आरोप। फैला उजियारा में आज सुनेंगे कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की।
She is a figure of belief in some ways. She allows the Indian imagination to think of a past.
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। दिल्ली के निर्भया बलात्कार कांड के 3 साल पूरे होने के साथ ही नाबालिग दोषी को रिहा कर दिया गया है। नाबालिग के वकील एपी सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस बीच निर्भया के माता पिता और कई लोग रिहाई के विरोध करने के लिए इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, जहां से पुलिस ने उन्हें हटा दिया। ये दोषी बलात्कार की घटना के वक्त 17 साल का था और उसे जुवेनाइल कानून के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई थी। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि अगर पश्चिमी देश सिर्फ चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ते रहे तो सामरिक रूप से उनकी हार हो सकती है। अध्ययन के मुताबिक अगर अमरीकी गठबंधन इस्लामिक स्टेट का खात्मा कर दे तो सीरिया में लड़ रहे कम से कम 15 विद्रोही गुट उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से जुड़े एक थिंक टैंक द सेंटर ऑन रिलीजन एंड जियोपॉलिटिक्स का कहना है कि 60% विद्रोही इस्लामी विचारधारा के हैं। रिपोर्ट लिखने वाले एड हुसैन ने कहा,
Our focus thus far has been simply on IS.
हमारा ध्यान अभी तक आईएस और उससे पहले अलकायदा पर ही केंद्रित रहा है। हमें इससे आगे बढ़कर इनकी विचारधारा को बनाने वाले गुटों की तरफ ध्यान देना होगा। ये कई साल से चल रहा है और संघर्षरत इलाकों में ये जारी रहेगा। इन युद्धरत इलाकों में किस तरह विचारधारा बनती है और फिर दसियों हजार संगठन और लोग तैयार हो जाते हैं, ये हमें समझना होगा। ये सारे गुट आईएस की जगह लेने के लिए तैयार हैं। ये थे एड हुसैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एयर फ्रांस के विमान के टॉयलेट में संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद विमान को कीनिया के मोम्बासा में मोई हवाई अड्डे पर उतारा गया। विमान में सवार लोगों से पूछताछ जारी है। मॉरिशस से पेरिस जा रहे विमान के पायलट के विमान की आपात लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी थी। विमान की पुलिस कीनिया की पुलिस प्रवक्ता चार्ल्स ओविनी ने कहा कि विशेषज्ञ विस्फोटक जैसे दिखने वाले संदिग्ध पैकेट की जाँच कर रहे हैं। स्पेन में मतदाता आज आम चुनाव के लिए वोट डालेंगे। स्पेन में आम चुनाव में 2 मुख्य पार्टियों के अलावा नई राजनीतिक पार्टियां भी आगे आई हैं। स्पेन में आसार जताए जा रहे हैं कि 4 साल से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री मारियानो रजोय की पॉपुलर पार्टी बहुमत खोकर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। वहीं सोशलिस्ट दल के पीछे रहने की संभावना जताई जा रही है। खर्च में कटौती का विरोध करने वाली नई पोदेमोस पार्टी और लिबरल सिटीजन पार्टी भी चुनाव में अपना खाता खोल सकती है। नेपाल के तराई इलाके में नए संविधान का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। कथित तौर पर जब प्रदर्शनकारियों ने बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू किया तो पुलिस ने गोलियां चलाई। पिछले 4 महीने से नेपाल के नए संविधान में भेदभाव का आरोप लगा रहे मधेसी समुदाय के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। तीन साल पुराने निर्भया बलात्कार कांड के दोषियों में शामिल नाबालिग को आज शाम रिहाई मिल गई है। निर्भया यानी ज्योति के माँ बाप इस रिहाई का विरोध कर रहे हैं। आज उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट पर ज्योति की याद में और नाबालिग की रिहाई का विरोध करने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। हालांकि सरकार ने इंडिया गेट के इलाके में धारा 144 लगा दिया, बावजूद इसके ज्योति के माँ बाप और दूसरे लोग वहाँ जमा हुए और नारेबाजी की। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन ज़्यादा देर तक नहीं टिका। पुलिस ने वहाँ जो मौजूद थे उन लोगों को जल्दी ही पकड़ करके वहाँ से हटा दिया। हमारे सहयोगी विनीत खरे अभी अभी जस्ट वहाँ से लौट कर आए हैं। विनीत, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और क्या हुआ एग्जैक्टली वहाँ पर?
देखिए, आज दोपहर में दिल्ली में एक जगह है जंतर मंतर, जहाँ पर ज़्यादातर प्रदर्शन होते हैं, वहाँ से एक मार्च जाना था इंडिया गेट तक, जो केंद्रीय दिल्ली में है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, पार्लियामेंट सेशन में है, धारा 144 लगी हुई है, तो बहुत मिन्नतें की निर्भय के माँ बाप थे उन्होंने, लेकिन पुलिस ने कहा कि वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न से हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो काफ़ी करीब 2-3 घंटे मैं वहाँ पर था दिन में। उसके बाद से फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, घोषणा की गई निर्भया के माँ बाप की ओर से कि भाई अब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, अब हम कॉल ऑफ कर रहे हैं और हम घर जा रहे हैं। हम सब लोग वापस आ गए। उसके बाद से खबरें आनी शुरू हुई कि जो निर्भया के माँ बाप हैं, और उसके बाद से ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कुछ अन्य छात्र संगठन, उन्होंने प्रदर्शन आयोजित किया है शाम को करीब 6 बजे के आसपास इंडिया गेट में, और वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, काफ़ी मार्मिक माहौल था। निर्भया की माँ रो रही थी, और जिस तरह से आज रिहा किया गया है, जो उनके लॉयर हैं APC सिंह, उन्होंने कन्फर्म किया है, उसको लेकर वो काफ़ी दुखी थी। उनको कहना था कि जो राजनीतिज्ञ हैं, बस जो TV डिबेट्स वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में जस्टिस जुवेनाइल एक्ट जो फंसा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, और ये गलत हुआ है, और ये आम लोग हैं उनके लिए खतरा है, बहु बेटियां हैं जो बाहर हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। उसके बाद से पुलिस वहां पर आई, उनको डिटेन किया गया है, कई छात्र संगठन उनको भी उठा के ले जाया गया, उनको थोड़ी देर में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने मुझे बताया।
आइए सुन लेते हैं कि जो निर्भया की माँ है आशा देवी, उन्होंने जंतर मंतर पर जब आप गए थे वहां पर, तो उस दौरान वहां पर उन्होंने क्या कहा, आइए वो उनकी आवाज सुन लेते हैं।
मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई है और मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे।
अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे आगे?
मेरे साथ बिल्कुल इंसाफ ही हो रही है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली में समाज में इतनी सुरक्षा लगाई जाए तो बच्चियों को एक बच्ची के साथ भी रेप नहीं।
अब
आप आगे क्या करेंगे मैम, आप यही बैठिए।
मैं इन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि 751 में उसको 150 151 में उसको अरेस्ट करें और उसको 14 दिन के लिए हिरासत में।
आपने सुनी आशा देवी की आवाज़, और आपको बता दें कि जो नाबालिग दोषी है उसे अब रिहा कर दिया गया है। अब वो हालांकि नाबालिग नहीं है, घटना के वक्त वो नाबालिग थे और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। विनीत हमारे साथ हैं, विनीत ये बताइए कि वो नाबालिग इस वक्त कहाँ हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
जी, उनके जो वकील हैं APC सिंह, उन्होंने पुष्टि की थी कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी रहेंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। बदायूं में, क्योंकि वहाँ पर मीडिया का काफ़ी बड़ा जमावड़ा है, तो माना जा रहा है कि शायद उनकी तरफ गए हों, यहाँ बदायूं की तरफ, या उनके पेरेंट्स को बुलाया गया हो। कहा जा रहा है कि अभी उनको एक गुप्त जगह पर रखा गया है, जहां क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट एक सेंटिमेंट है उनके अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट, उस लड़के के अगेंस्ट, तो इसलिए थोड़ा पुलिस संभल कर इस पर कार्रवाई कर रही है।
तो जरा सुन लेते हैं हम उनके वकील क्या कह रहे हैं इस बारे में, उनके साथ पुलिस जो है वो किस लिए है।
जहां रिलीज तक की बात है, क्योंकि अब ना किसी को हैंडओवर किया जाएगा ना किसी को, क्योंकि वो खुद मेजर है। ऐसा JJ बोर्ड का कानून है, जब खुद बालिग हो जाता है तो वो किसी के हवाले नहीं किया जाएगा, किसी को सौंपा नहीं जाएगा, किसी को सुपुर्द नहीं किया जाएगा, और पुरुष है इसलिए इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है, इसलिए उसे रिलीज कर दिया गया है। वो जहां भी है, अपना जो भी है, सुरक्षित है, और जिस तरह से भी
आप कह रहे हैं पुलिस की कस्टडी में नहीं है, तो आधिकारिक तौर पर अब वो पूरी तरह आजाद है आप कह रहे हैं, जो सेफ्टी का इशू है उसको ध्यान में रखते हुए शायद पुलिस उसके साथ हो।
बिल्कुल आधिकारिक रूप से वो आजाद है, अब पुलिस उसकी सुरक्षा में, जैसे सुरक्षा सहायक होते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, उस तरह से सुरक्षा में उसके साथ है।
विनीत हमने वकील की बात सुनी, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ कोशिशें कर रही है, क्या हैं ये कोशिशें?
देखिए कुछ रिपोर्टें हैं उसके अनुसार, जो जब वो डिटेंशन में था लड़का, उस वक्त उसमें उसने कई चीज़ें सीखी, उसमें एक टेलरिंग की बात सामने आ रही है, तो कहा जा रहा है कि टेलरिंग की दुकान सरकार खुलवाने की कोशिश कर सकती है, 10,000 रुपये देने की बात है। ये भी कहा जा रहा है, जो इनके वकील हैं APC सिंह, वो कह रहे हैं कि जो लड़का है उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश की जाएगी ताकि भविष्य में जो कुछ हो चुका है उससे उसके भविष्य को प्रभावित ना हो। लेकिन अभी आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा, मामला एक सुप्रीम कोर्ट में DCW ने, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने वहां डाल रखा है, वहां पर कल सुनवाई होनी है। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि अब वो उसे रिहा कर ही दिया गया है। तो कई चीजें हमें आने देखनी है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे मामले।
बहुत शुक्रिया विनीत खरे इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का जो आज दिन में सामने आई है। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DDCA के घोटालों का पर्दाफाश करने का दावा किया है। उन्होंने विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार की तहकीकात से जुड़े वीडियो दिखाए और DDCA पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। वहीं DDCA के उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने कहा है कि कथित खुलासे में कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। ये तमाम अनियमितताएं DDCA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ही उजागर की थी, इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य ले रहा है।
लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, अगर किसी को PhD चाहिए तो वो DDCA जा सकता है।
क्रिकेट का ये भ्रष्टाचार क्रिकेट का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हम। आप देख रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा ये सब नेता कह रहे हैं और उस माहौल में ये हरकतें हुई हैं, तो इनको उजागर करना क्या हमारा सोशल राइट नहीं बनता?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने कुछ इसी अंदाज में दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA की कथित अनियमितताओं को मीडिया के सामने रखा। दिल्ली प्रेस क्लब में करीब 2 घंटे चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीर्ति आजाद ने विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार की तहकीकात से जुड़ी वीडियो रिपोर्ट दिखाई। करीब 28 मिनट की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि DDCA ने 14 ऐसी कंपनियों को लाखों रुपए का भुगतान किया जिनका पता और जानकारी अधूरी थी या गलत थी। ऑपरेशन DDCA के नाम से दिखाई गई इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि DDCA में लैपटॉप और प्रिंटर के भुगतान में फिजूल खर्ची की गई।
20,000 में नया लैपटॉप आ जाता है तो वही रोजाना 16,900 रुपए उसके किराए के लिए दिए गए। जहां एक अच्छा खासा प्रिंटर 5,000 में आ जाता है तो वही एक दिन के लिए प्रिंटर का किराया 3,000 दिया जाता है।
कीर्ति आजाद ने कहा कि DDCA ने फर्जी कंपनियों को ठेके दिए और बिना सत्यापन के भुगतान किया। उन्होंने कहा,
अब आप समझ सकते हैं अगर आपको ऑडिटर ही पकड़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि फर्जिंग अकाउंट्स, ये कंपनियां जो फ्रॉड कंपनियां जिनकी जगह नहीं है, जिनके बारे में अता पता नहीं है, जिसको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसका मतलब तो यह है कि उसके बैंक अकाउंट भी फर्जी बने हुए होंगे। तो अभी CBI ने नोटिस दिया है, तो अभी तीसरा नोटिस आ गया जिसमें उन्होंने IPL के भी करार उन्होंने जो किए हैं उसके बारे में पूछा है।
साल 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे कीर्ति आजाद बीते कुछ समय से DDCA की अनियमितताओं को उठाते रहे हैं। DDCA के पूर्व अध्यक्ष और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि DDCA के मामले को लेकर एक सांसद ने कांग्रेस सरकार से शिकायत की थी और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। जेटली के मुताबिक उन्होंने कहा था कि वो जेटली को फिक्स कर देंगे। जेटली ने कीर्ति आजाद का नाम नहीं लिया था, लेकिन कीर्ति आजाद ने इस मुद्दे पर कहा कि उनके पिता काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीर्ति आजाद ने कहा कि वो किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं।
कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, भ्रष्टाचार हटाने के लिए जो उन्होंने मुहिम तेज की है, चलाई है, हम सबका समर्थन करते हैं और यह मामला सामने आया है वो कतई कोई व्यक्तिगत न ले।
उधर DDCA के उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने कीर्ति आजाद के आरोपों पर कहा कि इनमें कोई नई बात नहीं है।
जब एलिगेशन लगे थे प्रेसिडेंट SP बंसल के ऊपर, तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो हमने ही बनाई है, हमारी रिपोर्ट है, ये जो कोर्ट की जा रही है वो हमारी रिपोर्ट है और उसके आधार पर हम लोग एक्शन ले रहे हैं। SP बंसल को हमने जो सस्पेंड किया था तो उनको इंटरिम रिलीफ मिल गया है कोर्ट से। हमने तो एक रिटायर्ड जज से भी हमने जांच करा ली है, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। तो सारी चीजें पहले से पता है, बार बार निकल कर भी आ रही है और इसमें जो भी हम लोग कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई करेंगे इसको ठीक करने के लिए। सारा फाइनेंशियल मैनुअल वगैरह हम सब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
कीर्ति आजाद के पहले दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने भी DDCA के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। बीते दिनों जब दिल्ली सचिवालय में CBI ने छापे की कार्रवाई की थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि CBI की टीम DDCA से जुड़ी फाइलें देखने आई थी। उधर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने DDCA के पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली का समर्थन किया है। इन दोनों ने आज कीर्ति आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जेटली के समर्थन में कई ट्वीट किए।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। और अब आज वक्त है रविवार को देखते हुए फैलाव ज्यारा का, प्रोफेसर सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकार्नेशंस का हिंदी संस्करण, जो हर हफ्ते मोहनलाल शर्मा आपके लिए लेकर आते हैं। इस हफ्ते बारी है 23वीं कड़ी की, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं कहानी रानी लक्ष्मीबाई की। सुनिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह ब्रितानी हुकूमत को चुनौती दी।
अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर को आप क्या नाम देंगे, ये आपके राजनीतिक नजरिए पर निर्भर करता है। क्या ये भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, बगावत, विद्रोह, राष्ट्रवादी आंदोलन था, या फिर छिटपुट स्थानीय विरोध? बहरहाल विद्रोह की शुरुआत हुई आज के उत्तर प्रदेश के मेरठ से। बगावत की वजह थी अंग्रेजों द्वारा एनफील्ड राइफलों के इस्तेमाल का फैसला। इन नई राइफलों के लिए गोलियों का डिजाइन ब्रिटिश था और ये कलकत्ता के पास दमदम के हथियार कारखाने में बनी थी। राइफलों में गोलियां भरने के लिए उन्हें मुंह से खोलना होता था और अंदेशा ये था कि इन गोलियों में सुअर और गाय की चर्बी थी। ऐसी गोलियों को मुंह से खोलना बंगाल स्पॉय रेजिमेंट के हिंदू और मुसलमान सैनिकों के लिए उनके धर्म का अपमान था। ऐसे में बगावत की पहली आवाज उठाई हथियारों के कारखाने में एक ब्राह्मण कामगार ने और जल्द ही ये चिंगारी सिपाहियों में भी फैल गई। कई सिपाहियों ने राइफलों में गोलियां भरने से इनकार कर दिया, उन्हें सजा दी गई और फिर तो सिपाहियों में काफी वक्त से दबी नाराजगी फूट पड़ी। मई 1857 में मेरठ के सिपाहियों ने वहां के अंग्रेजों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। करीब साल भर में विद्रोह पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया। दोनों ओर से भयंकर हिंसा हुई। विद्रोह ने कई नायकों को जन्म दिया, लेकिन नायिका सिर्फ एक थी और वो थी विद्रोहियों की नेता झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई। रानी को कैद करने और झांसी पर कब्जा करने के लिए कटिबद्ध अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूज रोज की एक उक्ति मशहूर है। ह्यूज ने कहा था, विद्रोहियों में सिर्फ एक मर्द था और वो मर्द कोई पुरुष नहीं, मर्दानी रानी थी। हरलीन सिंह ब्रेंडलीज विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर एक किताब लिखी है।
आज की युवा महिलाओं को इस बात पर आपत्ति है कि अंग्रेजों के खिलाफ लक्ष्मीबाई के संघर्ष को मर्दाना काम माना जाता है। औरतें अपने जीवन में रोज संघर्ष करती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में, सड़कों पर, आजीविका के क्षेत्र में और अपने घरों में। भारत में औरतों के प्रति जो नजरिया है उसके खिलाफ हम कई मोर्चों पर लगातार लड़ रहे हैं। हम पुरुषों की तरह नहीं लड़ते, हम औरतों की ही तरह लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई औरतों के हक की लड़ाई है।
यकीनन लक्ष्मीबाई कोई साधारण रानी नहीं थी। उनके व्यक्तित्व की एक झलक विष्णु भट्ट के विवरणों में मिलती है। विष्णु भट्ट एक पुजारी और तीर्थयात्री थे जो 1850 के दशक में झांसी में रहते थे। उन्होंने लिखा,
रानी हर रोज भारोत्तोलन, कुश्ती और बाधा दौड़ के अभ्यास के बाद ही नाश्ता करती थीं। रानी बुद्धिमान और कुशल प्रशासक थी। कभी कभार वो अपराधियों को खुद भी छड़ी से दंड देती।
लेकिन 1857 से पहले कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि बगावत में अपनी भूमिका के चलते वो अंग्रेज अधिकारियों की नजर में 19वीं सदी की सबसे बड़ी खलनायिका बन जाएंगी। भारत के राष्ट्रवादी इतिहास में तो वो मिथक बन चुकी हैं। 1857 का विद्रोह अपने चरम पर था। जनरल ह्यूज रोज की सेनाएं रानी के किले को घेर चुकी थी और समझ रही थी कि रानी को मात दे दी है। लेकिन कहा जाता है कि रात के अंधेरे में रानी उन्हें चकमा देकर निकल गईं। वो घोड़े पर सवार हुईं, बेटे को पीठ पर बांधा और किले की दीवार से छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो गईं।
Looking from the ramparts of Fort Jhansi, some 200 miles south of Delhi.
दिल्ली से 200 मील दूर दक्षिण में झांसी के किले की प्राचीर देखने पर लक्ष्मीबाई ने जिस खाई को पार किया था वहां झाड़ झंकार नजर आते हैं और जहां से वो कूदी थी वहां धातु का एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है। करीब 50 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई होगी उन्होंने। महज सोचने से भी दहशत होती है कि इतनी ऊंचाई से कूदकर कोई भी, चाहे इंसान हो या घोड़ा, बच कैसे सकता है। हरलीन सिंह कहती हैं,
She is a figure of belief in some ways. She allows the Indian imagination to think of a past.
वो कई मायनों में आस्था की प्रतीक हैं। उनके रूप में भारतीय उस अतीत की कल्पना कर पाते हैं जो उनकी पहुंच से दूर है, वो अतीत जब लोग खतरों में कूदने को तैयार थे। लक्ष्मीबाई उस मजबूत इच्छा शक्ति की प्रतीक हैं।
लक्ष्मीबाई का जन्म 1826 में हुआ था। उनका नाम मन कर्णिका रखा गया, उन्हें मनु भी कहते थे। बचपन में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि उनकी परवरिश लड़कों के साथ की गई, घुड़सवारी भी उनकी शिक्षा का हिस्सा थी। उनका विवाह अपेक्षाकृत ऊंची हैसियत वाले और हाल में ही विधुर हुए झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया गया। 40 के ऊपर के गंगाधर राव सुसंस्कृत मगर अव्यवहारिक थे। विष्णु भट्ट के मुताबिक
उन्हें स्त्रियों के वस्त्र पहनना पसंद था, वो निसंतान थे और उन्हें अपने उत्तराधिकारी की चाहत थी।
लक्ष्मीबाई, as she was now named, was installed in the art-rich Jhansi Palace.
मनु को नाम दिया गया लक्ष्मीबाई और वो झांसी के कलात्मकता से सजे महल में आ गई। महाराजा की रुचि अपनी युवा पत्नी से ज्यादा अन्य बातों में थी, इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई का ज्यादातर वक्त अपनी सेविकाओं को घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाने में बीतता था। कुछ के मुताबिक उन्होंने सुप्रशिक्षित महिला सेना खड़ी कर ली थी। बहरहाल विवाह के 9 साल बाद 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और झांसी को उत्सव मनाने का मौका मिल गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। 3 महीने की उम्र में ही उनके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। महाराजा भी अधिक दिनों के मेहमान नहीं थे और अंग्रेजों की राज्य हड़पने की नीति के मुताबिक अगर उनके प्रभाव वाले किसी राज्य के शासक का देहांत हो जाए और उसका कोई वारिस न हो तो अंग्रेजों को उस राज्य पर कब्जा करने का अधिकार था। विशुद्ध कानूनी डकैती थी ये। 1853 में महाराजा ने अपने चचेरे भाई के बेटे दामोदर राव को गोद ले लिया और ये ताकीद कर गए कि उनकी मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई झांसी का कामकाज संभालेंगी। फिर भी महाराजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी हड़प ली और रानी को पेंशन देने की पेशकश की, लेकिन रानी ने 60,000 रुपए की पेंशन ठुकरा दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समक्ष याचिका दायर की कि उनके साथ ज्यादती की गई है।
क्या उन्हें झांसी के शासन और झांसी की भूमि पर कब्जा करने का हक है? क्या उन्हें हक है कि वे झांसी के खजाने पर कब्जा कर लें और राज्य के खजाने का बेहद मामूली हिस्सा उन्हें पेंशन के रूप में दें, और वो भी तभी तक जब तक प्रार्थी जीवित रहे?
अंग्रेजों पर रानी की याचिका का कोई असर नहीं हुआ। झांसी की निगरानी के लिए राज्य में एक सेना तैनात कर दी गई। अंग्रेजों की नजरों में रानी अब उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत के कई हफ्ते बाद बागी सिपाही झांसी पहुंचे। बढ़ती अशांति से भयभीत 60 अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवारों समेत झांसी के किले में शरण ले ली। जब रसद की कमी होने लगी तो विद्रोहियों ने उन्हें इस शर्त पर सुरक्षित बाहर निकालने का आश्वासन दिया कि वो अपने हथियार नीचे रख देंगे। अंग्रेजों ने बागियों की बात मान ली, लेकिन जैसे ही अंग्रेज किले के दरवाजे से बाहर आए उन्हें बंदी बना लिया गया। पुरुषों के सिर कलम कर दिए गए और औरतों व बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने दफनाया। आज ये स्मारक बंद दरवाजों से कुछ दूर उस गली में है जहां टायरों, पहियों और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मरम्मत होती है। अंग्रेजों ने इस नरसंहार के लिए रानी को जिम्मेदार ठहराया। रानी ने इस आरोप को अस्वीकार कर दिया। आज भी हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या थी, लेकिन एक बात तय थी और वो ये कि अंग्रेज अपना बदला जरूर लेंगे। इस बात के सबूत मिलते हैं कि सारे खून खराबे से खुद को अलग रखने के लिए रानी ने पर्याप्त कूटनीतिक चतुराई का सहारा लिया। लेकिन जब ब्रिटिश सेना ने उनके शहर पर चढ़ाई शुरू कर दी तो रानी के पास कोई विकल्प नहीं था। निरुपाय रानी ने अपनी जनता से संघर्ष का आह्वान किया।
हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जीतोगे तो विजय का फल भोगोगे और हारे और युद्ध के मैदान में मारे गए तो अनंत गौरव और मोक्ष के भागी होगे।
अंग्रेजों द्वारा की जा रही बमबारी के जवाब में किले से भी भारी गोलाबारी की गई। कहा जाता है कि तलवार हाथ में लिए रानी ने किले की प्राचीर से अपने सैनिकों की हौसला अफजाई की थी। पुजारी विष्णु भट्ट के मुताबिक
11 रातों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अंग्रेजी तोपों से गोले बरस रहे थे, छर्रों और कील काटों की बौछार हो रही थी। किले में आग लग गई और शस्त्रागार में विस्फोट हो गया। मंदिर भी उड़ा दिया गया।
अंग्रेज दूरबीन के जरिए रानी पर भी नजर रखे हुए थे। अंग्रेजों के पहुंचने से पहले ही रानी अपने घोड़े पर बैठकर इतिहास की मशहूर और अकल्पनीय छलांग लगा चुकी थी। हालांकि किले में छिपे विष्णु भट्ट के अनुसार वो आधी रात में किले की किसी पिछली सीढ़ी से निकल भागी।
Here in the ruined fort the queen left behind, at least 3,000 Indians were dead.
रानी जा चुकी थी और खंडहर किले में 3,000 भारतीयों के शव पड़े थे। अंग्रेजों ने झांसी के नरसंहार में 60 अंग्रेजों की हत्या का बदला ले लिया था। अनुपात था एक अंग्रेज के बदले 50 भारतीय। झांसी से कुछ ही घंटों की दूरी पर ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेजों से हुए इस युद्ध में वो लाल रंग के मर्दाने कपड़ों में भी हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार थी। जनरल रोज के अनुसार रानी के शव के पैरों में सोने की पाजेब और गले में मोतियों की माला थी। लक्ष्मीबाई की मौत के तुरंत बाद ही उनके बारे में किस्से कहानियां मिथक गढ़े जाने लगे। भारत में भी उन पर उपन्यास लिखे गए, गीत रचे गए, टीवी सीरियल और फिल्में बनी।
ये क्या क्या दिखा रहा है इधर? ये क्या है?
झांसी के किले की दीवारों के बाहर युद्ध के दृश्य अंकित हैं और यहाँ झांसी की रानी की सबसे प्रेरक तस्वीर शायद वो है जिसमें वो अपने घोड़े की लगाम दांतों से थामे, तलवार खींचे, आक्रमण के लिए तत्पर है। उनके जीवन के आखिरी क्षणों का चित्र है ये। यूं तो भारतीय जनमानस में महिलाएं प्रायः पराधीन हैं, लेकिन लोकमानस में स्त्री शक्ति में आस्था की भी गहरी जड़ें हैं। मगर समस्या ये है कि जो स्त्रियां पुरुष सत्तात्मक समाज की बेड़ियां तोड़ती हैं उन्हें देवी का दर्जा दे दिया जाता है, उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन सच ये है कि इस तरह उनकी वास्तविक उपलब्धियों की अनदेखी की जाती है। दुर्भाग्य से भारतीय इतिहास में बहुत कम महिलाओं को जगह मिली है और जिन्हें मिली भी वो या तो राजकुल की महिलाएं हैं या उच्च वर्ण की। वो रहस्यमयी हैं, लक्ष्मीबाई की तरह, जिनके बारे में रचे गए मिथक उनके जीवन की जटिल वास्तविकताओं पर पर्दा डाले हुए हैं। हरलीन सिंह कहती हैं,
Some sources have said that when she rode away from Jhansi to escape the British,
कुछ स्रोतों के मुताबिक जब रानी अंग्रेजों से बचने के लिए झांसी से निकली तो उनकी चिट्ठियों, उनके कागजात से भरा एक बक्सा था जो कभी नहीं मिला, खो गया। मेरी ये दिली इच्छा है कि किसी दिन वो बक्सा मिल जाए ताकि अलग अलग स्रोतों से रानी की कहानी गढ़ने के बजाय किसी दिन हम रानी के अपने शब्दों में उनकी कहानी सुन सकें। आखिर हम उनके वास्तविक जीवन के बारे में जानते ही कितना है।
मेरी कल्पना में कागजातों से भरे ऐसे कई बक्से हैं जिनमें छुपा है भारतीय इतिहास का खोया खजाना, यानी भारत की महिलाओं की अनकही अनसुनी दास्तानें।
रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी आपने फैलाओ जियारा में मोहनलाल के साथ। और अगर आप इसे दोबारा सुनना चाहें तो मंगलवार को विश्व भारती में आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। इसके अलावा bbchindi.com पर भी ये पूरे हफ्ते मौजूद रहेगा, वहां भी आप सुन सकते हैं। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। दिल्ली के निर्भया बलात्कार कांड के 3 साल पूरे होने के साथ ही नाबालिग दोषी को रिहा कर दिया गया है। रिहाई के विरोध में इंडिया गेट पर कैंडल मार्च के लिए जमा हुए निर्भया के माता पिता और कई लोगों को पुलिस ने वहां से हटाया। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने एक वीडियो के जरिए बताया कि डीडीसीए ने 14 फर्जी कंपनियों को लाखों रुपए का भुगतान किया। वहीं दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के पुनर्निर्माण में कथित वित्तीय घोटालों पर दिल्ली सरकार ने जांच आयोग का गठन करने का फैसला किया है। उत्तर पूर्व सीरिया में इदलिब शहर में हवाई हमले में राहत कर्मियों के मुताबिक 43 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। स्पेन की दो प्रमुख पार्टियों को नई राजनीतिक पार्टियों से कड़ी कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एयर फ्रांस के विमान के टॉयलेट में संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद कीनिया के मोम्बासा में मोई हवाई अड्डे पर विमान की आपात लैंडिंग की गई है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही, डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मिलेंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं तिलक भाटिया, सभी साथियों संग निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।